प्रेम की का स्वभाव है स्थिति, ये जाएगा नहीं। ये महाप्रभु स्वयं कौन है तो वो अपनी कुटिलता कैसे छोड़ेंगे। इसलिए कुटिल होने के नाते अपने प्रेम को छिपाकर और भिन्नता अपता अपने को इस रूप में दिखाइए, कुटिलता का ही इसी को कहते हैं कुटिल, क्योंकि वो प्रेम के सबसे बड़े शिक्षक हैं। तो वही यदि कुटिलता छोड़ देंगे तो क्या, इसलिए कुटिलता को रखते हैं अपने को। यहां पर मायावादी सन्यासी पर है, किंतु यदि उनको कोई ऐसा ही मान ले तो वो जाएगा एकदम सर्वनाश। इसको समझना चाहिए, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। वैष्णव को समझना बड़ा भारी कठिन, वैष्णव को स्वभाव स्तर कह देगा हम मायावादी,
हम विषयी
हैं, विषयी घोर विषयी। अरे घोर विषय कह रहा था तो वो ठीक कह रहा है, कैसे
कृष्ण
के प्रति वो है, वो खेती कर रहा है जो कृष्ण ही का विषय है, उनके प्रति मैं लिप्त हूं तो मैं विषय ही। किंतु समझना बड़ा भारी थी, यदि कोई कहे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, भगवान ही स्वयं भगवान है और वो सत्य स्वरूप है, इसलिए जो कुछ महाप्रभु का है वो सत्य संकल्प सत्य स्वरूप होने के कारण जो कुछ कहा है वो परम सत्यता है, इसलिए वो मायावादी सन्यासी। उनकी कुटिलता को कोई नहीं समझती, इसलिए भक्ति तत्व नहीं जाएंगे मायावादी भाषण महाप्रभु पर। मुझे तो भक्ति है ही नहीं है, मैं मायावाद अर्थात भक्ति के दुर्प्रभाव में मैं ही बंधु हूं, किंतु ऐसी बात नहीं। ये प्रकाशानंद सरस्वती कितने बड़े भाई जी विजय पंडित मायावाद अद्वैत ओनिल विशेष बात, उनको सरल सहज थोड़े में ही थोड़े से ही बातों में निरुत्तर कर दिया, थोड़े से ही बातों में, और उनको भक्ति तत्व में लेकर के प्रवेश। ऐसे ही कितने बड़े तार्किक को प्रकाश प्रबोधक में और उनको भी थोड़े से चुटकी बजाते हैं थोड़े से ही बातों में, ये साधारण काम नहीं है। इन दो तीनों के कारण एक हराया रामानंद, एक हुए प्रकाशानंद, ये तीन चारों को जब महाप्रभु जी ने सद रूप में अपने मत में ला दिया, विश्व के जितने बड़े दिग्विजय थे सब अपने आप, एक और क्या बाल लेखा वो दिग्विजयी पंडित केशव काश्मीरी को हारा, इससे समस्त लोगों की चोटी उनके हाथ में आ गई और सब ने उनके बात को निर्धार, ऐसा नहीं करने से प्रचार नहीं। इसलिए उन्होंने कहा तो ये मैं मायावादी हूं, किंतु यथार्थ में मायावादी नहीं, संन्यास भी लिया उसी संप्रदाय किंतु यथार्थ में नहीं। साथ हम संगीन हो मौन में देखो कैसे झूठे, गीता में भी परित कह रहे हैं कृष्ण जैसे झूठ बोलते हैं, मैं मट्टी में खाई भैया, ऐसे ये झूठ बोल रहे हैं क्या, सार्वभौम संग मोर मन में बल रहे, अरे तुम्हारे संग से तो उनका मन में बल हुआ और आप क्या कह रहे हैं उनके संग से मेरा मन में बल, कितना दूसरों को ये सम्मान देते हैं। साथ हम हर सरकार जी मायावाद में दूषित इनका हृदय था, मैं ब्रह्म ब्रह्म करते भगवान विराकार, ये जगत मिथ्या है, ये जगत मिथ्या नहीं है भाई, जगत सत्य है किंतु तात्कालिक सत्य है, हम सब परिणामवादी है। अभी किसी जी का जन्म हुआ, स्थिति हुई, कुछ बढ़ा, बढ़कर के फिर प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ का धीरे धीरे घटने लगा, फिर जर्जर हो गया, अंत में जाते अस्थि बढ़ते विप्रणते अपक्रियते ये उसके प्रभाव प्रत्येक संसार की चीजों में। ये संसार अभी जो दिख रहा है एक क्षण के बाद में फिर ऐसा नहीं रहेगा, जैसे जमुना जी का पानी अभी जो देख रहे हैं वो पानी वहां पर नहीं रहता, कहां चला गया, यदि धारा है नदी ने कहां चला गया, ऐसे जलक्षण सर्वसमति। हमारा शरीर अभी अभी एक सेकंड पहले जो था ऐसा नहीं है, क्यों
परिवर्तन
वो परिवर्तन इस ढंग से हो रहा है कि हमारे समझ में नहीं आता। कुछ दिनों के बाद देखने से ऐसा पता लगता है, साधन के सामने हमारा मन निर्मल। कृष्ण भक्ति तत्व कहो सहारे, मैंने उसे कहा कृष्ण तत्व किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, आप हमको बताएं। उन्होंने कहा तिहु कहे अन्य नहीं ज्ञान कृष्ण कथा, मैं कृष्ण कथा नहीं जानता। सौ रामानंद
सभी
रामानंद सभी जानते हैं। एक और भी व्यक्ति थे प्रद्युम्न,
प्रद्युम्न
ब्रह्मचारी, वो महाप्रभु के पास में गए। तो प्रभु हम कुछ हरि कथा सुनना चाहते हैं, महाप्रभु मैं तो हरि कथा कुछ जानता नहीं, मैंने रामानंद से कुछ सुना था वो भी भूल गया। तो रामानंद के रामानंद के पास में चले जाओ सुनाओ। तो वो गए सुनने के लिए, ये समझ रखिए बिना हरि कथा सुने कल्याण नहीं होगा, चाहे आप लाख करें लाख रटें और बचें और कुछ करें। बिना साधु संत के हरिनाम भी स्वयं भगवान है किंतु वो निर्मल नहीं होगा। हरिनाम आभास का आभास रह जाएगा या अपराधमय होता रहेगा। इसलिए कोटि कोटि जन्मों में हरिनाम करने से भी वो काम पूरा नहीं होगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, वो भंजन पुत्र संपत्ति स्वर्ग और यहां तक कि मुक्ति देकर के बस निरस्त हो जाएगा। और साधु संग में वही नाम शुद्ध होकर के क्रमशः पहले शुद्ध होगा, फिर रसमय होगा, फिर पूर्ण रसमय होगा, स्वरूप के अनुसार में आगे बढ़ते 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 भाव महाभाव तक भी हो सकता है, किंतु साधुओं के संग ऐसे नहीं। तो वो कहते हैं मैं नहीं जानता राय रामानंद, उन्होंने कहा जो राय रामानंद जो सब जाए। तुम्हारे आई नाम मैं तुम्हारे पास में, इसलिए कि मैं कुछ कृष्ण कथा भगवत तत्व और भक्ति तत्व की बातें सुनना चाहता हूं। हम लोग भी यहां पर एकत्र प्रतिदिन होते हैं, इसलिए हमारी भक्ति कृष्ण कथा हो सकता है कि कुछ लोगों का इधर उधर अच्छा नहीं लगता तो इसलिए आ जाते हैं, और कुछ लोग सचमुच नहीं आते हैं, जैसे इसमें कोई अच्छी बात हो सके, हम लोगों का हृदय निर्मल हो जाएगा, शुद्ध भक्ति हो जाएगी और हमसे बात हो जाएंगे। तो तुम्हारे विकट आया तुम्हें मोरे स्तुति करो सन्यासी ज्ञान, और आप हमको हमारा स्तुति करें कि आप
सन्यासी
सन्यासी हैं और हमको हरि कथा नहीं सुना रहे और स्तुति कर रहे हैं। देखिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं, महाप्रभु जी कह रहे मैं एक ब्राह्मण बालक हूं और उसमें भी विद्वान हूं और उसमें भी सुंदर हूं और उसमें भी सन्यासी हूं, तो इतना क्यों हो गया? तो और आप कौन हैं? एक तो है शुक्र जाति कर्ण, उड़ीसा में कर्ण जाति होती है, कर्ण जाति होती है, और उसमें राज कर्मचारी और उसमें भी गृहस्थ, मैं कहां नीचे? आप मुझको सोच रहे हैं जैसे ऐसे और मुझको बतला रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं सन्यासी हूं विद्वान हूं, इसलिए आप मुझको वंचना कर रहे हैं। कौन वंचना कर रहा है? राय रामानंद जी। किन को? महाप्रभु। इसलिए आप हमको हमारी स्तुति कर रहे हैं, किंतु देखिए शास्त्र में ऐसा लिखा है शिवा पुत्र शिवा न्यासी शूद्र के नुनाए जय कृष्ण तत्ववेत्ता शिवा पुत्र क्या पुत्र अथवा सन्यासी हो अथवा शूद्र हो, कोई भी जाति के अंतर्गत हो या बाहर भी हो, जय कृष्ण तत्ववेत्ता गुरु जो कृष्ण के तत्वों को जानते हैं, हमारे समस्त संदेहों को दूर कर सकते हैं, उनकी अनुभूति है वही व्यक्ति यथार्थ में गुरु। जो कृष्ण तत्व देखता है, जो कृष्ण तत्व को नहीं जानता, दूसरों को नहीं बतला सकता, उसके हृदय में नहीं उतार सकता, वो गुरु है। उन्होंने क्यों कहा? महाप्रभु जी कह रहे हैं, शायद आप ये समझ रहे हैं कि मैं सन्यासी हूं, ब्राह्मण हूं, और आप अपने को सूत्र समझ रहे हैं, किंतु तत्ववेत्ता है, फिर भी शास्त्रों में लिखा है अवस्थ संहिता एक है, और कोई एक ग्रंथ उसमें लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार जातियां और चार आश्रम
ब्रह्मचारी
कौशन। इसमें ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु और समस्त आश्रमों का गुरु
सन्यासी।
यदि वही ब्राह्मण और इधर सन्यासी हो गया तो बाकी चारों जो आठ है आठों का वो गुरुवताओं ब्राह्मण जो सन्यासी। यदि ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो ब्राह्मण जाति का भी हो और साथ साथ में सन्यासी भी हो तो उसको गुरु कर लेना चाहिए। यदि कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय वंश का उत्पन्न, तो उसको ऐसे ब्राह्मण का कम से कम करना चाहिए। यदि ब्राह्मण नहीं मिलता तो कोई वैश्य है तो उसको क्षत्रिय गुरु बना। यदि शूद्र है तो क्या करे?
वैश्य गुरु, वैश्य हो क्षत्रिय हो ब्राह्मण।
और यदि कोई गृहस्थ है तो वो वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी को भी गुरु कर सकता है। ब्रह्मचारी गुरु करेगा किसको?
सन्यासी।
और वानप्रस्थ किसको करेगा?
सन्यासी।
ऐसा नियम
होना चाहिए। सन्यासी किसको गुरु करेगा?
पंथर के सन्यासी हो गया और वो सबका गुरु हो गया, परम हो गया, उसका गुरु कोई नहीं। किंतु नरम पंथ राष्ट्र या और सब भागवत इत्यादि में, श्रीमद् भागवत में या उपनिषदों में यह बतलाया, यह नियम जेनरल है। जेनरल माने
साधारण रूप में,
साधारण शब्द, साधारण जिनको तत्व ज्ञान नहीं, जो भगवान को नहीं पाना चाहते हैं, जो केवल खाना की पूर्ति करना चाहते हैं। खाना पूर्ति एक होती है ना,
शरीर
नहीं, स्कूल में जाते हैं पढ़ते हैं तो कुछ छात्र होते हैं मन से पढ़ते हैं और कुछ छात्र होते हैं वो खाना पूरी करते हैं। जो खाना पूरी करते हैं वो पांच साल फेल होते हैं, दस साल और जो पढ़ने वाले होते हैं फर्स्ट सेकेंड उसमें से करते हैं, उन चीजों को समझते हैं। तो वो खाना पूरी करने वाले लोगों के लिए, वो ऐसे लोगों के लिए कहा गया कि जब ब्राह्मण हो और ब्राह्मण में भी सन्यासी हो तो वो कुछ भी नहीं जानता है तो उसको गुरु कर, कोई बात केवल जनरल देख लो और देख लो जैसे काला गोरा वो ब्राह्मण है। किंतु तत्वदर्शी व्यक्ति जो भगवान को पाना चाहते हैं उसके लिए ये सब नियम नहीं है। उनके लिए जहां भी जिस स्कूल में भी स्कूल के बाद भी यदि तत्वदर्शी कोई व्यक्ति हो, भगवत तत्व जानने वाला हो, कृष्ण तत्व और भक्ति तत्व का जानना हो, वही गुरु है। जैसे विदुर जी थे, विदुर जी कौन कुल के थे?
दासीपुत्र माना जाता है।
कौन कौन जाति? उनकी जाति क्या कहा? दासीपुत्र धृतराष्ट्र के, धृतराष्ट्र के नहीं, धृतराष्ट्र के पिता विचित्र वीर्य, वो भी बाप के संतान नहीं, औरस पुत्र है। औरस पुत्र किसके पर है? पिता कोई और हो और कोई व्यक्ति हो, उनके पिता थे विचित्र वीर्य, उनको कोई संतान नहीं थी। तो व्यास जी को उनकी माता सत्यवती जी ने स्मरण किया, बेटा हमारा कुल का संहार हो जाएगा, अब तो कोई बच्चा नहीं होगा तब तो फिर कुल ही बंद हो जाएगा, तो बच्चा हो उन्होंने आगे ठीक अपनी तुम दोनों अम्बा अम्बालिका को कहो या नंगी होकर के हमारे सामने आ गई। तो एक आई किंतु कांपती ही एकदम सर के मारे लज्जित होकर के
और चुग भाग
एक आए तो उससे जो हुए वो हुए पांडु
पांडु हुए
पांडु वर्ण हो गया
वो पांडु वर्ण लज्जा के मारे वो पांडु होकर के आई थी लज्जा से इसलिए उनके पुत्र ऐसा ही और एक आई लज्जा का मैंने आंख बंद कर दिया और उनके सामने आकर उनका पुत्र उन्होंने कहा दासी ने कृपा कर अच्छा दासी को अपने बुला तो उनकी जो दासी थी उनको बुला दिया वो एकदम प्रसन्न चित्त से और स्वाभाविक रूप में उनके सामने आकर के खड़ी हुई ताली बेटी तुम धन्य है तुमको सब सौभाग्यवान और सब तत्व ज्ञाता
अपहरण का गुण संपन्न अगस्त ऋषि कलश से जन्म लिया गौतम जी सुसत्कृष्ट से जन्म लिया
इसलिए गुरु कौन है आत्मा अजर अमर है आत्मा की कोई भी जाति नहीं है किसी भी तत्व से उसका जाति का निर्णय आत्मा से नहीं किया जा रहा और शरीर हर मांस और मेघ मज्जा का बना हुआ एक पुतला है जिसकी कोई जाति नहीं ये जीवित नहीं इसमें प्राण आत्मा की वजह से दिख पड़ता है प्राण में भी चेतनता नहीं है वो वायु है पंच प्राण आत्मा एक पृथक चीज है पंच प्राण निकल जाने पर भी आत्मा रह सकती है कोई जरूरी नहीं उसके अधीन नहीं चली भी जाएगी आत्मा स्वतंत्र है बल्कि भगवान के अधीन ये पंच प्राण मान ले कि किसी काम से इंजेक्शन देकर के उसको थिएटर हॉल में ले जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए उस समय उनको बंद कर दे तभी आदमी तो जीत रहता ही है इसलिए उसके अधीन नहीं है इसलिए आत्मा अजर अमर है और इस सबसे बड़ी इसलिए इस तत्व को और भगवत तत्व को जानने वाला जो व्यक्ति वही यथार्थ जो हमारे अंदर के मैल को आत्मा के मैल को दूर करके भगवान में स्थिति लगा दे वही यथार्थ हो कोई भी जाति कोई भी कहीं का ऊपर का हो उसके लिए कुछ नहीं यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु की पूरी कह ये कार्य इसलिए ये आप हमको वंचना मत कीजिए इसलिए कह रहे हैं उसमें भी आजकल कितने शब्द निकलते हैं हम लोगों के ये संप्रदाय में भी विचार आजकल निकला है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का तात्पर्य और इसी में संबंध है एक बतलाया कृष्ण का स्वरूप होता है साक्षात दीक्षा गुरु और कृष्ण का स्वरूप है दीक्षा गुरु तो रूप बड़ा है कि स्वरूप बड़ा है अरे रूप और स्वरूप तो दोनों एक ही है रूप और स्वरूप में अंतर क्या है एक स्वरूप को देने वाले एक रूप को देने वाले इसलिए वहां पर कोई भी भेद तारतम्य नहीं है किसी को उन्होंने शिक्षा दी और किसी को एक दूसरे गुरु में वैसे जो उनको दीक्षा दी किसी ने शिक्षा दी इसलिए यह सबका विचार न करके भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करें कुछ लोग कहते हैं शिक्षा गुरु ये प्रभुपाद जी ने इसकी टीका दी है नहीं इसी में इसी में प्रभुपाद जी ने कहा लोग कुछ लोग कहते हैं दीक्षा गुरु में ये देखना चाहिए ये ब्राह्मण है और संन्यासी ये देखना किंतु शिक्षा गुरु जहां का भी कोई भी हो वही है कोई भी व्यक्ति हो किसी भी जाति का हो वो तत्व तो जानना उससे ले लेना चाहिए किंतु दीक्षा गुरु में यह विचार करना जरूरी है कि वो सन्यासी और ब्राह्मण ये भेद कृष्ण ये निर्बोध लोगों का काम दोनों एक ही तत्व है इसलिए जहां कहीं भी सुख गुरु मिले नारद जी का कौन से आ जाती है वो भी तो दासी पुत्र थे
गोस्वामी जी
सुत गोस्वामी जी थे
रथ को चलाने वाले क्या रथ
के साथ
ऋषि
गौतम ऋषि भी और इसलिए
गुरु बने
बल्कि एक समय की बात है एक लड़का था वो किसी अपने गुरु गौतम के यहां गया। तो एक थे गौतम, ब्राह्मण थे, ऋषि थे, ब्रह्मर्षि। तो एक लड़का उनके पास में गया, उनके पास में अध्ययन करने के लिए, वेदों का अध्ययन करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। उन्होंने कहा कि अपना नाम गोत्र बतलाओ, बिना नाम गोत्र किए कोई भी काम उस समय नहीं होता। आप लोग धर्म देखिए, इधर देखिए, जाओ जाओ। पास में गया, गुरु जी ने पूछा जी अपना नाम और गोत्र बतलाओ। इधर सुनो, इधर सुनो। उसने कहा मेरा नाम
सत्य काम,
सत्य काम, सत्य काम है, मेरी मैया का नाम जगाला, और मैं इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं जानता, मारा पर्चा कुछ भी नहीं। तो तुम जा अपनी मैया से पूछा कि तू किसका बेटा है और तुम्हारा गोत्र क्या है, तब मैं किसी को शिक्षा देता हूं। ऐसे नहीं, उपनयन देता हूं, उपनयन देकर के और उनको शिक्षा देता हूं। हो गया। उसकी मैया से पूछा कि मैया हमारा गोत्र क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या है, हमारे को गुरु जी पूछ रहे हैं, नहीं तो हमको नहीं स्कूल में भक्ति कर रहे। उसने कहा जैसे जाकर के अपने गुरु जी से कहा, मेरी माता युवा काल में पति विहीन थी, पति नहीं था, बहुत से पति हमारे थे, उसमें कौन सा कौन से पति से तुम पैदा हुआ मुझको पता नहीं है। तुम कह देना कि हमारी मैया का नाम जगाला है, मैं उसका पुत्र हूं, हमारा यही माता। तो ठीक ठीक जाकर के गुरु के चरण में हाथ जोड़ करके वो पढ़ दिया, ये मेरा नाम जवाला गौतम है, मेरी माँ मैया ने ऐसा कहा। जब मैं युवावस्था में बहुत से पति थे किंतु मैं नहीं जानती जो किससे पैदा हुआ। राजेश इतना सत्य तो कोई ब्राह्मण नहीं बोल सकता, तुम यथार्थ में ब्राह्मण हो, तुम सरल हो और सत्य कहते हो, इसलिए तुम ब्राह्मण के लड़के और तुमको ब्राह्मण समझ करके तुम्हारा उपनयन देकर के तुमको बेहतर बेहतर बस उनको कोई गोत्र सत्र की जरूरत।
यहाँ पर केवल गुणों के कारण
श्रीमद भागवत सबसे प्रमाणित ग्रंथ उसमें बतला रहे हैं कि एक ऋषभ देव थे, उनके 100 लड़के हुए, 100 लड़के में बड़ा वाला क्षत्रिय हुआ, वो पृथ्वी का शासन करता भक्त महाराज हुआ, और उसमें 9 हुए 9 योगेंद्र, जाति पाति से अति परमहंस हुए, ब्राह्मणों के भी गुरु हुए, और 81 थे वो क्या हुए
परमकांडी
ब्राह्मण। ये कैसे हो गया, पहले ऐसे था
और 9
यदि ऐसा ही गुण और कर्म पर आधारित होकर के गुण कर्म सामने ब्राह्मण लोग काम करने लगे, क्षत्रिय लोग काम करने लगे, वैश्य लोग काम करने लगे, ऐसा ही सत्य युग हो गया।
तो 9
युग तक ऐसा था, उसके बाद में कोई गुण हो न हो, कोई जरूरत नहीं, कोई साधन भजन समान। और ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माने क्या, ब्रह्मचर्य माने लोग समझते हैं स्त्री के साथ में नहीं रहना ही ब्रह्मचर्य है, या गलत है। ब्रह्म में विचरती थी ब्रह्म, ब्रह्म
ब्रह्मचर्य,
ब्रह्म में विचरण करने वाला, तत्व से जान करके मैं भी ब्रह्म का अंश हूं, मैं सेवक हूं, और कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है, उनको तत्वता से जान करके वैसे इत्यादि करने का नाम है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा ब्रह्मे आचरती चलता है, चरती
विचरती
है, इसका सब तात्पर्य। हम लोग भी सचमुच में सभी स्वभावतः सभी लोग ब्रह्म हैं, और जन्म से सभी शूद्र हैं, स्वरूप से हम लोग सभी ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न है, और ये शरीर से जन्म लेने के कारण जन्म ना जाते
शूद्र
संस्कार, संस्कार से संस्कार माने क्या, पहले वाला संस्कार शूद्र का जो था उसे हमारा जन्म हुआ, किंतु संस्कार माने अब इस जन्म के जो हमारा संग है उस संग से हमारा संस्कार दे रहे हैं। कौन दे रहा है,
गुरु दे
रहे हैं, कैसे अपने संग के ऐसे ज्ञानी डाल दिया और मन तक दिया संस्कार हो गया, ऐसा संस्कार नहीं है। कुलों को जानते ही नहीं, ये रस्सी किस लिए पहनाई जाती है, नहीं समझते, ये संस्कार के लिए दिया जाता है। काम पर चाहो तीन बार, प्रतिज्ञा करो जब ही उस पर जाओ। किस लिए? मैं ब्रह्म जातीय वस्तु हूं, भगवान तीन है, भगवान उनकी शक्ति भक्त भगवान भक्ति भक्ति भक्ति, इस तरह से जीव तत्व माया तत्व भगवत तत्व, ये तीन तत्व हैं। इस तरह से तीन 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 मिलकर के नौ गुण हुआ। इनके प्रति हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। ये सब उपनयन है, ये विद्याएं ज्ञान करके क्रमश अभ्यास करते करते उपनयति, ये विद्या उसको ब्रह्म तक ले जाती है, भगवान तक ले जाती है। इसलिए सब चूल को नहीं जानते। आज ब्राह्मण भी जनेऊ खोल करके पेड़ में टांग जानते ही नहीं है किसने।
पर ये
विशेष करके विदेशों में जितने भी भारतीय हैं, यहां भी भारतीय लोग हैं और विदेशों में तो सब, क्योंकि जानते नहीं है तब। इसलिए कहते हैं किस भी शूद्र कुल में भी कोई जन्म ले, कहीं भी ले, यहां तक कि स्त्रियां भी यदि तत्वदर्शी हैं, तत्वज्ञानी हैं, भगवत तत्व को जानते, वो भी गुरु
तो उनका संस्कार
होता है, आत्मा के साथ में संघ से होता है, उनका भी संस्कार होता है।
नहीं, इन लोगों का जैसे पांचरात्रि के दीक्षा विधान के द्वारा संस्कार होता है, तो स्त्रियों का जैसे
उनका मंत्र के द्वारा हो जाता है, काम गायत्री उपाल मंत्र और ये सब मंत्रों के द्वारा हो जाता है। भगवान की भक्ति का भाव देकर के उनका संस्कार होता है, वो परम पवित्र हो गई। इसीलिए गार्गी इत्यादि हमारे प्राचीन काल में जानना जी अभी भी गंगा माता ठाकुरानी, ये सब गुरु तत्व है।
हेमलता ठाकुरानी तो गार्गी तो स्त्री है, तो स्त्रियों को क्यों नहीं दिया जाता?
क्या
गायत्री मतलब स्त्री है, स्त्रियों को क्यों नहीं दिया जाता है? तो स्त्री देने पर झगड़ा करे,
जब उसका असल स्वरूप ही आ गया काम गायत्री में, तो नीचे वाला देने की क्या जरूरत है? यदि कोई परमहंस हो गया तो उसको जनेऊ लेने की क्या जरूरत है?
ब्रह्मगायत्री को तो राधा जी के मंत्र मानते हैं,
अभी कल्पना करते और जिसको वही राधा जी का ही मंत्र दे दिया तो फिर उसके लिए क्या रहा?
अयोध्या
नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेमायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय गौरवस्तु हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त सप्तकाञ्चन गौराङ्गीरा देवीन्द्रामि मध्यलीलाश्रम परिच्छेद प्रारामाणि और महाभुजिका में चैतन्य महाप्रभु जी और रायानंद के लिए साधक साधन तत्व के संबंध में रायानंद की उपयोग को हम लोगों ने सुना। उसमें राधा कृष्ण को
साधनावली
साधन क्या बतलाया भाव से उनकी सोच और उन्होंने कुछ पाने के लिए आगे बढ़ने के लिए किया। यद्यपि शास्त्र अवधि उन्होंने बतलाया तो भी और कुछ पाए, मतलब है और कुछ बाकी रह गया और उसके लिए चार से पूछा कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रेम तत्व और ये चार चीजों के लिए आप इसके संबंध में बतलाई। उन्होंने कहा किस काम के थे वो तो हाथी के द्वारा पूजा हो रहा हमारे ऊपर निशाद हम भट्टाचार्य ने की बात और मैं यहां आया वैसा ही आपको देखा रामानंद जी कराएंगे से आप जो हमसे प्रेरणा हमारे हृदय में कराएंगे वही मैं कहूंगा मैं हूं बिना आपने बिना जंत्र को बजाने वाला प्रभु जी ने उत्तर दिया मैं मायावादी सन्यासी भक्ति तत्व में कुछ नहीं जानता मायावाद में ही के समुद्र में मैं डूबता उतर आता हूं साधन के जी के साथ में हमारा मन कुछ निर्मल हुआ और उन्होंने बताया कि मैं कुछ न कथा कुछ नहीं जानता राय रामानंद के पास में जाऊं और आप मेरी वंचना कर रहे हैं मैं आपके पास में आया हूं कभी आप जैसी प्रेरणा देने में कहा रहे हैं परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान अनंत वैकुंठ अनंत अवतार अनंत ब्रह्मा बिहा सभा आधार सचिदानंद तम ब्रजेंद्र नंदम सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सर्व रसपूर्ण ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्वकारण कारण ये ब्रह्म संहिता का श्लोक दिया इसके उदाहरण इसके प्रमाण ये ईश्वर परम कृष्ण है उसका इन्होंने ये तीन मैं छह पायाओं में बहुत ही सुंदर और जहां तक अर्थ हो सकता है उन्होंने किया यदि प्रवेश नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा श्लोक में जो है उसको एकदम मुक्त प्रग्रह रूप से इसको व्याख्या उन्होंने ऐसा सुंदर अर्थ कोई हो ही नहीं सकता इसी तरह से श्रीमद् भागवत के जितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं सब उन्होंने चैतन्य चरितार्थ में लिए हैं संग्रह करके लिए और उसका अर्थ जैसा कि रघुनाथ ठाकुर ने इनको कहा था कि रामानंद और स्वरूप दामोदर के साथ महाप्रभु कैसे आस्वादन करते हैं इनको उचित तरीके से अर्थ किया भागवत की टीकाओं में भी जो नहीं मिलेंगे कुसुमदास कविराज गोस्वामी ने उन सबका बहुत ही सुंदर अर्थ किया ये भी एक भागवत के टीकाकार ही है
इतने अद्भुत रसी भक्त हैं इतना अलंकार और इतना साहित्य समझ में
तो वहां से पढ़ नहीं सकते हैं भजन के द्वारा ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं भगवान की भगवत्ता दो प्रकार की होती है एक सर्वैश्वर्य पूर्ण और दूसरा होता है सर्वरस पूर्ण एक रस की दृष्टि से और एक होता है ऐश्वर्य की दृष्टि से माने एक माधुर्य की दृष्टि से और एक ऐश्वर्य तो यहां पर पहले ऐश्वर्य का उनका वर्णन कर पहले लेंगे ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण इसके देखने से मालूम होता है सब प्रकार के जो ऐश्वर्य है उन्हीं का वर्णन किंतु इसमें माधुर्य का भी वर्णस्ताव कारण कारण ने वो सब ले लिया और सचिदानंद विग्रह में वो लिया तो ये कर रहे हैं स्वयं भगवान जिसे सब लोगों की सब अवतारों की भगवत्ता हो जैसे एक ही चंद्र अपनी
15 कलाओं में कि 16 कला में,
16 कला,
16 कला में वो प्रकाशित होता है। एक ही चंद्र, चंद्र दो नहीं, एक ही चंद्र। किंतु पृथ्वी के घूमने से और ग्रहों के स्थान के ऊपर में रहने से यहाँ के व्यक्ति, यहाँ के लोग, पृथ्वी लोक के रहने वाले लोग चंद्र को प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या इस रूप में देखते हैं। चंद्र में ऐसा कुछ है ही नहीं, चंद्र में स्वरूपता कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इतनी कलाएं है, नहीं है। किंतु छाया के वजह से सूर्य और चंद्र और पृथ्वी इन तीनों की स्थितियों के कारण ऐसा ये दिखता है। जैसे सूर्य है, सूर्य में रात्रि और दिन नहीं है, केवल दिन ही दिन है। शाम, सवेरे, दोपहर, रात, आधी रात या अष्टयाम सूर्य में नहीं है, है कुछ नहीं है। किंतु कैसे दिखता है?
मित्र प्रकाश,
वो तो मित्र प्रकाश सूर्य है, उनमें न आधी रात है, न दिन है, न 12 बजे का है, न 8 बजे का, न 6 बजे का, सब समय एक ही समान होते हैं, सब समय एक ही समान ताप और सब कुछ है। किंतु वो दिखता है कैसे? तो वो ऐसे दिखता है हम लोगों के यहां, जब पृथ्वी सूर्य के दूसरे तरफ में घूम आती है तो आधी रात हो गई, सामने आए तो दिन हुआ, जब छिपने लगे तब शाम हो गई, जब उठने लगे तो सवेरा हो गया। यथार्थ में सूर्य में कुछ भी नहीं है, ये सब अवस्थाएं। इसी तरह से ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद स्वयं भगवान, तो जो स्वयं रूप कृष्ण है वही ब्रजेंद्रनंद, उनमें ही साधना के तारतम्य से वो कृष्ण के अनेक रूप जैसे दिख पड़ते हैं, किंतु है नहीं। साधना के तारतम्य से ही ऐसा दिखता है। जैसे सूर्य और चंद्र के ग्रहों के चाल पर, स्थिति पर सब कुछ ये निर्भर करता, वैसे तो कृष्ण जैसे चंद्र या सूर्य परिपूर्ण रूप में है, चंद्र उसकी समस्त कलाएं देखती हैं, वो भी पूरी कला नहीं देखती। चंद्र पूरा दिखता है, पूर्णिमा के दिन आधा दिखता है, सामने वाला आधा दिखता है, पीछे वाला दिखता है, पीछे वाला नहीं दिखता है, केवल आधा ही दिखता है। तो अभी पूर्ण रूप से गोलाकार दिखता है, इसलिए उसको पूर्ण चंद्र मान लिया। ऐसे ही पूर्ण चंद्र के रूप में स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, और उन्हीं के अंश या कला तत्व वैभव अवतार, ये जितने भी अवतार हैं, अधिकांश रूपों में 24 अवतारों की बात बतलाई है, भगवान के 24 अवतार, जिनमें राम, कृष्ण, राम और सिंह परावस्त कहा गया है, उनको परावस्त कहा गया। तो अभी राम इत्यादि जितने हैं उनके अंश और कला इत्यादि, नारायण द्वारकाधीश इत्यादि से आरंभ कर बलदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और नीचे में जितने भी अवतार हुए हैं, ये सब कृष्ण स्वयं रूप हैं भगवान के अवतार माने भागवत इत्यादि में सब में ऐसा ही कहा गया सर्व अवतारी समस्त अवतारों के वो मूल अवतारी हैं सर्व कारण प्रधान समस्त कारणों के भी ये प्रधान है अर्थात सर्व कारण मैंने क्या उस जगत के जीव जगत के और ब्रह्मांड जगत जितने भी कारण हैं समस्त कारणों के मूल कारण अच्छे पानी पानी कैसे हुआ पानी तो हम देखते हैं किंतु तो पानी का कुछ कारण तो कैसे पानी बनता है
रस गुण
क्या क्या चीज मिल करके ऑक्सीजन और क्या क्या
नाइट्रोजन
और वो कहां से आता है वो कहां से प्रकृति से आया प्रकृति कहां से आई कर्णाधिशाई से कर्णाधिशाई कहां से आए नारायण मूल आम वो महासंकर्षण महापन संकर्षण कहां से आए बलदेव जी से बलदेव जी कहां से आए इसी तरह से सब जितने भी कारण हो सकते हैं सब कारणों के मूल कारण वही अनंत वैकुंठ जितने भी वैकुंठ हैं और अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांड यहां सवार आधार सबके आधार मूल कारण ये कृष्ण सच्चिदानंद तनु विजेंद्र नंदन सच्चिदानंद प्रजेंद्रनंद सब चीत और आनंद से जीत सब मैंने सब के अधिष्ठात्री बलदेव प्रभु उसे संधिनी शक्ति और उसे जितना रूप वैकुंठ जगत में जीव जगत में और इस ब्रह्मांड में मायिक जगत में जितने भी रूप हैं देखे जाते हैं जो कुछ देखा जाता है वो सब संधनी शक्ति से होता है ये बलदेव प्रभु जी से और बलदेव प्रभु कृष्ण से निकलते हैं और चीत माने होता है ज्ञान जानना बच्चा जन्मते ही उसका एक शरीर होगा और वहीं से जानना आरंभ करेगा जहां ज्ञान का विकास हुआ ना पूछेगा ये कौन ये क्या वो क्या जो कुछ देखेगा वही पूछेगा जैसे ये क्या ये ज्ञान और आनंद आनंद भी चाहेगा सभी आनंद चाहते हैं सचित आनंद की जहां इसकी परिपूर्णता पूर्णतम अवस्था है उनका नाम प्रजेंद्रनंदन वे संबित संधिनी और ग्लादिनी इसके अधिष्ठात्री देव बलदेव प्रभु राधिका और कृष्ण तीनों के सम्मिश्रण होकर के तो ये प्रजेंद्रनंदन श्याम सर्व ऐश्वर्य सर्वैश्वर्य और सर्वशक्ति जितनी भी शक्तियां हैं सब शक्ति और सब रसों से ये परिपूर्ण है सर्वशक्ति सर्व ऐश्वर्य न्याय इत्यादि में जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सब इनमें है उससे भी परिपूर्ण मात्रा में है पूर्णतम मात्रा में सब शक्तियां हैं ये समस्त शक्तियों के आधार है और सर्वरस पूर्ण ये ऐश्वर्य और शक्तिमत्ता की दृष्टि से
राम नृसिंह वामन कल्कि नारायण सबको एक अव्यय तत्व माना गया। किंतु जहां रस का विचार होता है, रस के द्वारा ही इन तद्रूप वैभव अर्थात अवतारों की श्रेष्ठता माने वैशिष्टता प्रतीत हो। नारायण में भी सर्वैश्वर्य है, कृष्ण में थोड़ा सा ये है कि परिपूर्णतम मात्रा में, किंतु है सभी। राम में भी है, निशिंग भी है, एक ही तत्व है, दो तत्व तो है ही नहीं। किंतु यदि कहा जाए जो कृष्ण में जो चीज है नृसिंह देह में भी वही है या राम में भी वही है तो कुछ गड़बड़ी हो जाए। यदि कहें यह है तो राम में और नृसिंह में पूर्ण प्रकाशित नहीं है तो भी ये ठीक है। क्यों नहीं ठीक? राम उसी का नाम है,
ये प्रकाश नहीं है तब
नहीं, तभी उनका नाम राम। कृष्ण में ये सब चीजें हैं, जब अढ़ाई रस प्रकाशित होता है उनको राम कहेंगे, ये बात तो ठीक है। ऐसे समझने की चेष्टा है, कृष्ण परिपूर्णतम है, उनमें 12 रस हैं और सर्वशक्तिमत्ता भी है और सर्व शक्तियां भी इनमें है और सर्व ऐश्वर्य भी है। अब इनमें से भगवान अघटन घटेवन प्रत्यशी सर्व शक्ति से युक्त हैं। जब वो कहते हैं भगवान कृष्णचंद्र, उनमें सभी रस सब शक्ति सब कुछ है, वो अपने शक्ति में से कुछ शक्तियों को प्रकाश करते हैं और अढ़ाई रसों को ही प्रकाश करते हैं। कौन? शांत पद
शांत पूरा दास पूरा सौ वात्सल का होता
है, तब इनको अढ़ाई रस कहा जाएगा, माने मुख्य रसों का और
दोनों
रस सब हो सकते, माने मुख्य रस का ये अढ़ाई रस। इसलिए कोई कहे रामचंद्र जी ने सब रस है किंतु प्रकाशित नहीं करते तब तक गड़बड़ हो जाए। राम उसी का ही नाम है, उन्हीं कृष्ण का नाम है, जब वो अढ़ाई रस को प्रकाशित करके अपने पापी को अच्छा भी करते हैं। निशिंग हो निशिंग में कितना है? शांत है और दास, यही दो प्रकार, वो भी दास के परिपूर्ण रूप में नहीं बल्कि उनमें रोद्रस इत्यादि भयानक इत्यादि उनमें ये सब गौण रस प्रकाशित अधिक। तो ये निशिंग रूप में कोई मधुर रस की कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छा उनमें है किंतु प्रकाशित नहीं, ऐसा भी मत करो। कृष्ण में है, जब वो केवल इतने ही रसों को दो रसों को और गौण रसों में भयंकर और वीर और रौद्र भयन इन तीनों को अधिक प्रकाश करते हैं तब उनका नाम कृष्ण। कृष्ण ही सब रस है और सब अवतार है। कृष्ण में ही जैसे चंद्र में अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी ये सब कल्पित होती है, ऐसे कृष्ण में ही ये सब चीजें कल्पित है। कृष्ण ही मूल है और उनमें ही रूप है। ये दिखता है क्यों? यदि प्रहलाद महाराज जी होते कृष्ण लीला के समय में तो वो कृष्ण को निसिंह रूप में स्तुति करते। हनुमान जी कृष्ण को जब देखेंगे तो वो राम रूप में उनकी स्तुति करेंगे, उनको राम ही दिखाई पड़ेंगे। इसलिए द्वारका इत्यादि में जब हनुमान जी गए तो उनको उसी रूप में दिखते। तो सर्व ऐश्वर्य सर्वशक्ति सब रस पूर्ण ये कृष्ण है, इसी के लिए बताया गया ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। वृंदावने अप्राकृत नवीन मदन
काम गायत्री काम दीजिए जार उपाय। ये जो स्वयं भगवान जो कृष्ण हैं, ब्रजेंद्र नंदन या यशोदा नंदन या राधा कांत, ये जो स्वयं कृष्ण हैं, ये वृंदावन में अपराजित नवीन मदन है। मदन दो प्रकार का, एक प्राकृत
एक अपराजित
और एक अपराजित। इस जगत में उसको काम कह सकते और उस जगत में अपराजित काम या नवीन मदन उनको कहते हैं, अनंग भी कहते हैं। दोनों में अंतर यह है, जगत वाला काम नरक में ले जाता है और इंद्रियों में कभी कभी उत्पन्न होकर के क्षुब्ध कर देता है समस्त इंद्रियों और सब समय नहीं रहता, कभी कभी वो प्रकट होता है। और अपराजित मदन है वो सब समय आत्मा को क्षुब्ध करता है, किंतु कभी उतरेगा नहीं उसानुसार और कृष्ण के प्रति होगा, ये होगा जड़ के प्रति और वो होगा कृष्ण के प्रति, और उसका नशा कभी नहीं उतरेगा, इसका उतर जाएगा कभी मारपीट से पीट करके अपमानित करके जेल में डाल दें या कुछ और भी हो जाए तो ये नशा उतर जाए, उसका नशा किसी प्रकार से नहीं उतरेगा और सब समय सेवा भाव में और निस्वार्थ होता है और नव नवायमान होता है। वो काम गायत्री काम दीजिए जाल पास, काम गायत्री और काम बीज के द्वारा जिनकी उपासना, वो स्वयं काम है। कृष्ण का नाम ही है काम, काम माने क्या, जिसकी कामना की जाती है उसको कहते हैं काम। अभिलाषा जिस वस्तु की होती है, सबसे श्रेष्ठ अभिलाषा क्या है, कृष्ण ही, क्योंकि वो सबसे सुंदर हैं, सबसे मधुर हैं, सबसे उदार हैं, सबसे बड़े कृपालु हैं, सब प्रकार से वो सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए उनकी यदि के प्रति हमारा काम हो, वो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, तब हमारा स्वरूप भी चरितार्थ हो जाए। जब तक वो नहीं मिलते हैं तभी तक हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, चाहे जहां भी चले जाएं, जैसे गोप कुमार का जब तक नहीं मिले उनको वैभव मिलता गया, पृथ्वी में बड़े धनी हुए, फिर इंद्र बने, ब्रह्मा बने, ऊपर तक चले, कहीं भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, सनक नंदन सनक कुमार इत्यादि के यहां भी गए, ब्रह्मा के निकट गए, फिर वहां से शिवलोक में गए, उसके बाद वैकुंठ गए, रामचंद्र जी के यहां गए, फिर द्वारकापुरी गए, मथुरा आए, कहीं नहीं उसकी तृप्ति हुई, अंत में जब कृष्ण से मिले तो उनकी शांति। उसी तरह से जीव मात्र के लिए जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक उसको कभी भी शांति और ये नहीं होगा। कृष्ण का सर्वोत्तम रूप है काम, वो आस्वाद्य और आस्वादक दोनों दो रूप उनका है। लेकिन कैसे हैं, एक रसिक है और एक रस है, जब रस है तो आस्वाद्य है और जब रसिक है तो आस्वादन करते हैं, सत्ता जब रस स्वरूप है तब आस्वाद्य है, तब वो रस के विषय है, दूसरों के द्वारा आस्वादनीय है उसे, और जब वो रसिक शेखर है तो रसिक शेखर होने पर आस्वादन किया जाता है, तब द्वादश रसों के जो आश्रय हैं उन्हें अंदर में जो प्रीति है उसका वो आस्वादन, उसका आस्वादन, तब वो
आस्वादक
आस्वादक है, तब रसिक है। रसिक और रस में अशाद और अशाद में ये उनका ये भाव है। यदि उनको कोई रस पूर्वक आस्वादन करना चाहता है, उनको आस्वाद्य मान करके, तो क्या करना होगा? काम गायत्री और काम कृष्ण उनकी उपासना करना। पहले होगा काम कृष्ण मंत्र और उसके बाद में होगा काम काम भी और इसके साथ में जो करना पड़ेगा काम गायत्री, तब जाकर के उनकी उपासना से उनको ये समझ सकेंगे कि कैसे वो रस स्वरूप है और कैसे वो रसिक है, तब दोनों की उपलब्धि होगी। ऐसे नहीं होगी, काम गायत्री में बतलाया गया साढ़े 24 अक्षर और ये अक्षर साढ़े 24 अक्षर ही एक एक चंद्र माने कृष्ण के अंग रूपी चंद्र है। तो ये चंद्र कितने हुए? तो ये साढ़े 24 एक एक चंद्र माने पूर्ण चंद्र है, इसमें आधा कोई नहीं। चंद्र के दृष्टि में पूर्ण परिपूर्ण है, इसलिए साढ़े
25 हो गया,
साढ़े 24 ही हुए चंद्र। जितना अक्षर है उतने चंद्र, आधा अक्षर है ना,
आधा चंद्र पूरा कर लिया गया,
वो पूरा मान लिया, आधा ही है किंतु चंद्र की दृष्टि से वो परिपूर्ण है। कैसे है भाई? विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर जैसे आराधना कर, बिना आराधना किए हुए ऐसे ही हम कहने से भी समझ में नहीं आए। उसमें बतला रहे हैं ये कैसे, पहले गायत्री ब्रह्म गायत्री जिसको, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं और एक दो नहीं, और इसके देवता भी बहुत से हो सकते हैं, सूर्य भी हो सकते हैं, सविताएं और अग्नि भी हो सकती है, इंद्र भी हो सकते हैं, विष्णु भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते, बहुत से इसके देवता है। इसलिए शिव उपासक भी ये करते हैं ना, तो इसको शिव का मंत्र कहते हैं। स्मार्टों में जो सूर्य उपासक हैं उसको सूर्य उपासना का मंत्र कहते हैं, विष्णु की उपासना करने वाले उसको विष्णु का मंत्र कहते हैं। जैसे ओंकार है ना, और ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, इस रूप में लेकर के विष्णु को बीच में करके शंकर उनको जो सहायक है इस रूप में उनको लिखा। इसके बहुत से अर्थ भी, जैसे जैसे देवता बदलते जाएंगे जिस जिस देवता के लिए वो किया जाएगा उसका अर्थ भी वैसे ही होगा। इसलिए समस्त भारतवर्ष में जितने भी ब्राह्मण लोग क्षत्रिय लोग वैसे गायत्री मंत्र जरूर करते हैं, आजकल स्त्रियों को भी दिया जाने लग गया, यहां तक कि जो कुछ नहीं जानते उनको भी मंत्र बाजार का वो सूत्र खरीद कर धागा खरीद करके बस लपेट देते हैं गुबरी को। अभी कुछ दिन पहले यहां पर एक यज्ञ हुआ था, करीब 10-12 वर्ष पहले की 15 वर्ष पहले श्री राम शर्मा ने कराया था, अब तो वो दिवंगत हो गए। बड़ा भारी मेला लगा था, उसमें 1008 यज्ञ कराए और जो आ गया चीटी इससे लेकर के बैल गधे घोड़े बाजार में, उस समय में धागा खत्म हो गया, सब खत्म, कोई धागा नहीं, और सबको दे दी और सब ब्रह्म में लीन हो गए। इतना सहज नहीं, इसे कहते हैं होने पर भी काम गायत्री जो है उसका एक ही मात्र अर्थ है, दो अर्थ नहीं होगा। काम गायत्री वो कृष्ण कर्तृत्व किसी में लागू होगा ही नहीं, किंतु है उसी का परिपक्व ये भाव। ब्रह्म गायत्री अष्टुप है और उसी का यह सिद्ध स्वरूप परिपक्व फल या रसमय ब्रह्म है। दोनों एक ही चीज को डिनोट करता है, एक ही चीज के लिए। ब्रह्म गायत्री ही परिपक्व अवस्था में, सिद्ध अवस्था में कान गायत्री, तब यह रसमय होती है। उसमें सूर्य लिया गया, कहीं कुछ लिया गया, और उमा से ये सब बहुत से तत्व सब लिए गए। इसमें वही ओंकार जो था प्रणव, उपासना करते करते भक्तों के हृदय में वो पुष्पित पल्लवित और फल से युक्त होने पर वही काम बीज दिया। इसमें काम बीज होने पर रस, जैसे कच्चा आम है, कच्चा आम में सभी कुछ पके आम में होता है, किंतु वो सब रसमय हो जाता है, इसलिए रस एक बढ़ गया। इसी प्रकार से इसमें उसमें तीन था ना, और अब इसमें हो गया अनुस्वार, ये चार इसमें एक रस बढ़ गया। अब इसके साथ में अब इसमें कृष्ण मंत्र भी इसी के अंदर है, वो भी आ गया है, कृष्ण काम गायत्री वो भी आ गया है, ये बतलाना नहीं चाहिए। कभी अभी हल्के ढंग से बतला देता, हल्के ढंग से, क्योंकि यहां पर अधिकांश लोग दीक्षित है, इसलिए थोड़ा सा बतला रहा, पूरे ढंग से नहीं बतला। जिसको जानना होगा वो स्पेशल रूप में वो पूछेगा तब होगा, अभी साधारण ढंग से। कल ई अनुस्वार वो ओम, ओम ही यहां पर हो गया, और बाकी जो तीन चरण है गायत्री वाले में, ब्रह्म गायत्री का, वो तीन चरण इसमें भी आ गए। आ करके पहले कृष्ण मंत्र हुआ, और कृष्ण मंत्र का फल लग गया काम गायत्री, वो काम, काम मन ही फल होता है, वो फल आ। जैसे कॉलर ई अनुसार है, क माने सच्चिदानंद श्री नंदनंद ब्रजानंद नंद श्याम सिंह, और ई का ई माने गृही का, ये शक्ति है, शक्ति भी सर्व शक्ति, सब शक्तियों की मूल शक्ति कौन है, लक्ष्मी स्वरूप का। तो ई का अर्थ हुआ राजा, और ल हुआ दोनों के मिलन में जो रस उत्पन्न होता है, उनका जो विलासमय जो भाव है, ये हुआ ल माने आम दहलादनी से, ये दोनों का मिलन का, ये ब्रह्म और ओंकार में ये चीज नहीं है। और ये जो है वो क्या है, उसमें जो आनंद मिलकर के दोनों से जो उत्पन्न हुआ, वो ये हुआ बिला, और उन दोनों का जो मिलन का जो आनंद है वो हुआ चंद्रग्रहण। और उसमें पहले मंत्र कृष्ण मंत्र में कृष्ण है, गोविंद है, और गोपी जन बल्ल, एक है संबंध, एक है अभिधेय, एक है प्रेम, संबंध है कृष्ण, बहुत ही सुंदर रूपवान गुणवान है, रूपवान गुणवान और सुंदर से ही संबंध होता है, और सभी चार हैं, इसलिए मदन मोहन जो है वही यहां पर कृष्ण है, वो जगत के साथ में संबंधित है, सब जगत को प्राणियों को मोहित करने वाले हैं, समस्त जितने भी अवतार हैं सबसे सुंदर। और यही वो को माने इंद्रियों को उत्फुल्ल करने वाले हैं, आनंद से प्रमत्त करने वाले हैं, तब वही कृष्ण मदन मोहन जी ही गोविंद के रूप में अनुभूत होते हैं, समस्त इंद्रियों के द्वारा हृदय को भी उल्लास करने वाले, आनंद नैनों को भी, कर्णों को भी, समस्त इंद्रियों के वो विषय, और सबसे उनकी सेवा, इसलिए वही
गोविंद प्रियस। और गोपीनाथ कौन है? ये प्रयोजन तत्व है। वंशी भक्तता स्थिता दर्शन बेन सराई गोपीनाथ, वो समस्त जीवों को, प्राणियों को अपने वंशी से और अपने रूप से सबको आकर्षित करना है और उनको आनंद प्रवीण देने वाले ये गोपीनाथ। अब इन तीनों को ले लो, उसमें काम गायत्री में पहला है, पहले जो मदन मोहन जो है संबंध के देवता, अब यहां पर मदन मोहन जो, अब ये काम है, माने वही काम के अधिष्ठात्री देवता, वही जगत में सबसे अधिक अभिलषणीय है, वही काम स्वरूप। अब वहां यहां आकर के परिपक्व रूप में यहां कर दो काम, ये काम ही। और दूसरे से संबंध वाले गोविंद जी, सेवा को ग्रहण करने वाले समस्त रसों को के जो विषय और आश्रय दोनों हैं, कौन है? विषय और आश्रय कृष्ण। अब ये यहां पर जो गोविंद है, सब रसों में इनकी आराधना हो सकती है और सब रसों के ये प्रापक ग्रहण करने वाले हैं, आस्वादन करने वाले भी हैं, आस्वाद भी हैं। अब ये हो गए, यही हो गए, ये अभिधेय हो गए यहां। और उसे ऊपर जो उसमें थे गोपीनाथ, गोपियों के साथ में विलास करने वाले समस्त परसों के मूल आश्रय विग्रह जी हैं और सब रसों का आस्वादन करने वाले गोपीनाथ जी। आप यहां पर हो गए और समस्त जगत को प्रमुख करने वाले। अब उसने बतलाया ये काम गायत्री से उनकी उपासना होती है, केवल काम गायत्री से नहीं, उसमें बीज से जोड़ दो, तो बीज से जोड़ने पर ये पूरा मंत्र हुआ। उसमें अब देखो ब्रह्म गायत्री भी आ गई और कृष्ण मंत्र भी इसमें आ गया, इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले, ब्रह्मा जी को पहले कृष्ण ने योग माया के द्वारा गोपाल मंत्र, लाखों वर्ष तक उनकी आराधना की, जब कल्पक उनकी आराधना हुई तो कृष्ण ने अपने वंशी के ध्वनि से इनको कैसे दिया, तीन स्वरों में दिया, तीन तालों में स्वरों में दिया, इसलिए त्री है, आठ आठ अक्षरों का एक संघ, एक एक स्वर यहां दिया और होकर के तीन चरणों में जिसका दान करने पर विश्व के समस्त लोगों का तरण तारण दोनों कर दे और अपने को उसमें काम के रूप में प्रकाश कर दे, ये है काम गायत्री। अच्छा, इसको कृष्ण गायत्री कहने से हर्ज क्या आता है?
जब संबंध अगर हो जाएगा
इसको काम गायत्री कहा। यहां पर कृष्ण से भी बढ़कर के नाम, ये जो काम है ये मधुर भाव में ही केवल ये ग्रहण किया जा सकता है। कृष्ण की चरम परिणति या सर्वोत्तम अवस्था का नाम काम, वही कामदेव अनंत के रूप में, इसलिए काम गायत्री कहा, उसी से उनकी उपासना। इसमें सनातन शिक्षा में यह बताया गया कि वही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जब इसकी व्याख्या करने के लिए गए तो उनको पता नहीं जैसे भाई ये 24.5 अक्षर तो इसमें कैसे हुए, या तो होगा ना क्लीन को छोड़ दो तो होगा 25 और उसको ले लो क्लीन को तो हो जाएगा 26। उसमें भी अंत में जो है ना
आधा तो
याद है ना,
या अर्थों को अलग अलग कर दो तो कुछ 26 हो जाएगा और या को एक ले लो तो 24.5 होगा
25
होगा। तो 25 में से आधा है जो 24.5 होगा, नहीं समझ रहे, ये समझना भी बहुत कठिन है। हम लोग को ये बतला दिया भी जाए कि कौन कौन सा अक्षर क्या है, तो अभी हम लोग फिर समझ में पीछे नहीं जाए। अब ये कह रहे हैं राधा जी ने उनको स्वप्न दिया और उसमें प्रकट होकर फिर उनको कहा क्या प्रणादम व्याकरण में इसको बतलाया गया है ये बी के पहले जो यकार होगा वो आधा। उन्होंने पुस्त आकर के खोजा, ढूंढने के बाद वो मिली और उन्होंने देखा उनका सुचे थी। और साधना करने के बाद में उनके एक एक अक्षर 24.5 अक्षर होना चाहिए और ये 24.5 चंद्र है, ये कैसे हुआ चैतन्य चिंता में वहां बताया गया। मुख चंद्र जो है मुखिए ये पहला चंद्र और सबसे श्रेष्ठ है, ये समस्त चंद्रों का ये मालिक
राजा।
24.5 चंद्र हैं उनमें ये मालिक कौन है, राजा कौन,
मुख चंद्र
ये। अब इसके बाकी सब परिषद चंद्र हैं, सब परिषद चंद्र, परिषद माने परिवार परिकार। फिर मुख चंद्र के बाद में बताया दो कंड माने कपूर्ण, तो ये भी दो पूर्ण चंद्र, तीसरा हुआ ना। और चौथा बतलाया लला, इसको बतलाया अर्थ अर्थचंद्र, और उसके बीच में जो ललाट में जो बिंदी होती है ये पूर्ण किंतु है। ललाट को आधा क्यों कहा, ये केशु से आधा ढका हुआ है और है ना अष्टमी का चंद्र, इसको माना गया अष्टमी का चंद्र क्यों माना गया, वो स्पष्ट होती है और आधा मैं बने 16 का आधा कितना हुआ 8 हुआ ना। 16 चंद्र की 16 कलाओं में से जिस दिन आधा होगा अष्टमी को तो वो आधा चंद्र, इसलिए अष्टमी का चंद्र मान लिया गया दला। और उसमें यहां जो गिनती है उसको पूर्ण मान, ये हुआ 4.5 पहचान मुख 1, 2, 3, 4 पूर्ण वाला 4 और आधा हो गया 4.5 और बाकी जो रह गया 20, 10 ये नख और 10 ये नख, ये 24.5। इसमें से एक एक चंद्र का वर्णन करते थे, आधा जो ललाट है वो थी उसमें जो ये है ना साम देवाल वो थी उसी स्थान पर है, जब आप इसी तरह से विचार करेंगे तो देखेंगे ये उसी स्थान पर ललाट के स्थान पर ही वो आप, किंतु अर्धचंद्र होते भी वो पूर्ण है, इसलिए 4.5 के लिए नहीं वो 24.5 में आधा वाला भी पूर्ण है, क्योंकि कृष्ण कैसे हैं अखंड है पूर्णमिदम पूर्णमद पुनात पूर्णम उदित्य थे पुनश्च पूर्णमेव
पूर्णमादाय
पूर्णमेव पूर्णमेव वो पूर्ण है, उनका आधा कुछ नहीं, उनका एक अंश और कला भी है वो परिपूर्ण है। इसलिए काम गायत्री जो है ब्रह्म गायत्री का परिपक्व और रसमय स्वरूप है, उसमें ये सब विलास नहीं है, उसमें जगत की सृष्टि का व्यापार है, भूर्व असहम जनपत सप्तकार सृष्टि जिससे होती है और जिससे ये सब प्रकाशित होते हैं, जिस तेज के द्वारा प्रकाशित होते हैं मैं उनका ध्यान करता हूं। और यहां पर क्या हो गया,
जो विलासों से परिपूर्ण जो है, जो अपनी शक्ति के साथ में, अपने समस्त शक्तियों के साथ में परिपूर्ण रस में जो विकसित है, उनकी उपासना का शिष्य बनता है। ये एक दो दिन का काम नहीं, इसकी उपासना यदि ठीक से इसकी उपासना हो, अपने आप अपने स्वरूप को ये प्रकट करते चले जाए। गायत्री भी वैसे ही है, गायत्री भी प्रकाशित होने में न जाने कितने जन्म लग जाएगा, किंतु ब्राह्मण मात्र को, बीज मात्र को, बीज माने ब्राह्मण सबको गुरु से ग्रहण करके और इसका कुछ तत्व जान करके जरूर करना चाहिए, तब हम मनुष्य खींच लिए गए हैं, तब कुछ समझेंगे इन्हीं सब चीजों के लिए। जो तत्व से नहीं समझ कर तुम नहीं करेंगे तो कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी, कुछ इतने के बाद में सुख हो, और ऐसे समझ बूझ करके करेंगे उसमें श्रद्धा आएगी, फिर निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, और वही मंत्र कृष्ण के रूप में। ये मंत्र नहीं है, ये राधा कृष्ण का ये स्वरूप है, ऐसा समझ करके, और ये सर्व अंतर्यामी वृंदावन के नवीन मदन सर्व कार्य कारण सर्व शक्तिमान सर्व ऐश्वर्यमय ये नाम है, ऐसा समझ करके करना। फिर कहते हैं पुरुष जो बात पावर जंगम सब चित्ता पर साक्षात मन मन मनमत मनमत मदन पुरुष हो या ज्योतिष हो नारी हो अथवा सावर जंगम भी क्यों न हो, सावर जंगम ने पेड़ पौधे कीड़े पकौड़े ज्योतिष हैं, सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं, और साक्षात मनमत के भी मदन स्वरूपीय कौन, काम गायत्री अथवा कृष्ण दोनों के, ये दोनों एक ही स्वरूप है, दो नहीं है। अभी मंत्र के रूप में देखता है, देखते हैं नाम मंत्र कृष्ण और कृष्ण स्वरूप सभी एक है, कृष्ण का स्वरूप कहो मंत्र कहो नाम कहो सब एक ही स्वरूप, किंतु होता क्यों नहीं, अभी हम लोग कृष्ण नाम करते हैं क्यों नहीं दिखता है, दिखता क्यों नहीं है, जैसे हम लोग अभी बद्ध अवस्था में हैं, संसार के विषय जितने हैं जो तो बड़े प्रिय और मनोरंजन लगते हैं, मनोहारी लगते हैं इस जगत, जैसे क्रीड़ा है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, और दूसरे खेलना धुलना, आजकल यूरोप में फुटबॉल खूब जोर से हो रहा है, कहीं क्रिकेट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये मनोहरण करता है, किंतु हम लोगों को तो कुछ अच्छा नहीं लगता ये सब, बल्कि देख करके इधर से हाथ बंद करते हैं, क्यों, इसी तरह से इस जगत में सब कुछ मनोहारित तो नहीं लगेगा, जब तक हम बद्ध हैं तब तक ये जगत अच्छा लगता है कुछ समय के लिए, किंतु यही अपराकृत वस्तु कुछ कुछ अनुभूति का विषय होने लगती है तो ये संसार का सब कुछ, यहां तक कि परिवार स्त्री पुत्र धन संपत्ति जो कुछ भी है सब, ये विश्व की सृष्टि करने वाले शंकर हैं ना? शंकर जी इस रूप से मुक्त नहीं होते, ये विश्व के रूप को देख करके यहां तक कि कामदेव को भी जला दिया ना? किंतु उन्होंने जब वही रूप के लिए प्रार्थना किया तो अपराकृत जगत की एक झलक थोड़ी सी दे दी, अपराकृत जल के या कहो जो महामाया का ही झलक दे दी, और शंकर जी ने उसे देखा, और शंकर जी कैसे हो गए, एकदम हिम्मत हो गए, इतना उसमें रूप है, इतना उसमें माधुर्य है, जो लोग अनुभव नहीं करते वही लोग भजन नहीं करते, जिनको थोड़ा सा भी अनुभव है ना वो भजन छोड़कर के जगत में कभी भी नहीं गया। चैतन्य महाप्रभु जी की विश्व सुंदरी स्त्री, आज उनकी शादी हुई वहां जन्मभूमि में, अभिनय शादी महाप्रभु उनके साथ में बड़े सुख से रह रहे। कुछ दिनों के बाद में गया गए, गया गए कभी कैसे उनके गुरु मिल गए ईश्वर पूरी पा, कैसे व्यक्ति नम्र धर्म विश्व का कोई भी विषय उनके पास में रुपया है नहीं, खूब सुंदर होंगे वैसा भी नहीं, बूढ़े थे बस हरे कृष्ण करते थे और आंखों से सब समय आंखों प्रभावित होते थे। उनसे भेंट हो गई, महाप्रभु जी ने उनको देखा और कहा आज हमारा पृथ्वी साथ इत्यादि जिस काम के लिए गया मैं आया
आपका सपोर्ट
तो हो गया, आज आपके दर्शन से कोटि कोटि माता पिता का साथ हमारा आज
हो गया
था। अरे मैं अब तक क्या कर रहा था, संसार के वैभवों में लुप्त हो रहा था, कितना मैं मूर्ख था। महाप्रभु जी मम्मी मम्मी विचार कर है भगवान किंतु अभी नरलीला के अनुसार में चल, मैं अभी संसार भोर में चल रहा था, आज इनके दर्शन से और इन्हें जो मंत्र दिया आज मेरा जीवन सुधार है। जो पढ़ने वाले निमाई थे पंडित निमाई वो बदल गए,
हकुम निमाई
और हो गए कैसे
भावुक निमाई,
भावुक निमाई हो, और जो जा रहे थे घर घर मैंने विषय की तरफ में संसार की तरफ में, वो वहां से मुड़ करके चले जाने जा रहे हैं दर्द। और सब समय क्या कर रहे हैं, कामो प्राणनाथ मुरडी गदम, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्रनंदन, ब्रजेंद्रनंदन बिना खाते मो सब समय ये झूठ मुख को रो रहे हैं। इतने वैभव फले और विश्व के श्रेष्ठ सुंदर महाप्रभु जी और उनकी पत्नी भी बड़ी सुंदरी और सबको छोड़ करके रोने लगे, क्यों कुछ देखा ना ऐसे ही रोने लगे, देखा जैसे पिंड मंगल ने कृष्ण को देखा ना बस लोग ऐसे ही देखा और सब कुछ त्याग कर, उसी तरह से यहां पर भी कर रहे हैं। उनका ये दो तीन श्लोकों में अभी वर्णन करेंगे, कैसे वो सुंदर हैं, कैसे रूपवान हैं, कैसे गुणी हैं, सबका चित्त कैसे मोहन करने वाले होते हैं ये कृष्ण, जिनको उपासना काम गायत्री से होता है उसके भी ताम आप सौरी मेहमान मुखाम गुजर ती काम सबकी मन मत सबका मन मत, ऐसा सुंदर धारण करके जगत के समस्त प्राणियों को मुक्त करने वाला मनमत के भी मन को अर्थात कामदेव के भी मन को मथन करने वाले ऐसा सुंदर रूप प्रकाशित किया। नाना भक्त रसामी नाना भी इसकी व्याख्या हमने पहले सब की इसलिए आगे चल रहे, नाना भक्त रसामी इसको समझने के लिए थोड़ा समझ लीजिए। उसमें विश्व की सबसे सुंदरी गोपियां हैं, कैसी किशोरी हैं, रूप गुण में सबसे श्रेष्ठ रहने वाली वो वहां उपस्थित थी, सबने अपना अपना एक आसन उनके लिए बनाया, एक एक दल की गोपियों ने अपने उत्तरीय दर्शन उन पर रखे और गोपियां वो जो अभी विरह में तड़प रही थी उनके निकट आए। विशेष करके चार उसमें प्रसिद्ध हैं, स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ और सुख, वो सब वहां पर उपस्थित। किसी ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और उनके तरफ में देखने लगे, मतलब क्या आप कैसे निष्ठुर हैं जो हमें छोड़कर के असहाय अगला बना था और रोते नहीं छोड़कर के आप अंतर था। किसी ने पैर पकड़ लिया और अपनी गोदी में रख ली, ये एक तरह की गोदी, और किसी कोई
काफी भ्रुकुटी बद
अभी अब तीसरी थी
स्वच्छ स्तर पर अपने चरण को धारण
किया, कृष्ण के चरण को अपने पस्तक से इत्यादि पर धारण करके अब उनकी तरफ में देख रहे हैं। और कोई कोई गोपियां बहुत दूर से निकट नहीं आई, उनके तरफ में भ्रकुटि से देखने लगी और मुख भी वैसा कुछ रोष पूर्ण, इसमें कुछ बम्ब भाव वाली, कुछ दक्षिण भाव वाली, कुछ सुहित पक्ष वाली, तटस्थ वाली, वो सभी और श्रीमती राधिका जी जो है और उनकी जो सैनिया है दूर से उनकी तरफ में देखने, कुछ रोष पूर्वक कुछ मान के साथ में देखने, आप कैसे हैं। और उन्हीं लोगों ने पीछे से प्रश्न किया था, प्रीति करने पर जो प्रीति नहीं करते, प्रीति करने पर जो प्रीति करते हैं,
करे और ना करे नहीं करे,
और नहीं करने पर भी जो प्रीति करते हैं, तीन करते ही नहीं है, उनमें से आप प्रभु कौन से हैं, उनसे सब ऐसे प्रश्न किए। वो सब श्रीमद भागवत कारक नहीं है सर, कैसा ये सब विषय है, बिना अच्छी तरह से पढ़े करने, बिना किसी अनुसंधान किए और बिना अच्छी तरह से नहीं आएगा। और करें नाना विध भक्त, विशेष करके पांच प्रकार के भक्तों में से रसामृत नाना विध भक्तों भक्त भक्तों के भक्तों में नाना रसामृत नाना विध रस का जो अमृत है
अनेक
प्रकार के, अर्थात पांच प्रकार के शांत दास्य सत्य दास्य पर मधु से सब रसामृत विषय आश्रय, उस रस के अमृत का विषय और आश्रय ये कौन है, दो तरह से, एक उस अमृत के रस भक्ति रस है, भक्ति रस के एक विषय है एक आश्रय, विषय कौन है और आश्रय कौन है, शांत दस शास्त्र बात्सल्य मधुर रस वाले जितने भी भक्त हैं ये सब आश्रय। किंतु जब यह कहा जाएगा कि कृष्ण ही दोनों के आश्रय और विषय हैं तभी हो जाएगा, तभी ये ठीक है, कभी कभी कृष्ण समस्त रसों के आश्रय होने पर भी विषय होने पर भी आश्रय भी होता है। जब भक्त लोग कृष्ण का की सेवा करते हैं
तब कृष्ण भी सर
और कृष्ण उसका रसास्वादन करते हैं, जैसे यशोदा जी की गोदी में बैठे हुए हैं कृष्ण और यशोदा जी उनको लाल प्यार करते हुए अपने स्तन उनको पिला रही हैं और उनके वात्सल्य रस का आस्वादन कृष्ण कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे क्या विषय हो जाए, आस्वादन कर रहे हैं ना? और यशोदा जी के आंखों में आंसू आने लग गए और कृष्ण का रूप गुण और उनका बाल्य भाव देख करके उसका आस्वादन करने लगी कृष्ण को देख करके, तो यशोदा जी क्या हो गई, जब कृष्ण उनको आस्वादन उनका रसास्वादन करते हैं तो वो विषय हो जाएंगे, आज जब
यशोदा जी आस्वादन करेंगे सब विषय
तो हो जाएंगे, उसी तरह से सब रसों में
समझना।
जब भक्त लोग सखा लोग कृष्ण के साथ में गोचारण करने जा रहे, कृष्ण कहते हैं जो सखा अरे गायें इधर उधर गई उनको जरा हाथ ले आना, तो आदेश कौन दे रहा है, आज जब सखा लोग भी कहेंगे कृष्ण भैया गाय मिल रही है नहीं गई, हमने बहुत खोजा अब जरा खोज लाना, तो आदेश देने वाला कौन,
सखा लोग,
तो वहां पर सखा लोग क्या हो जाएंगे और वो
कंधे में चक्की
फिर कृष्ण खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं और सब भक्त लोग अपना टेस्ट करके और कृष्ण को खिला रहे, उनका जूठा जब उनको खिला रहे हैं तो उसके विषय कौन है आस्वादन करने वाले,
तो भक्त विषय सखा विषय
वो कृष्ण विषय है और सखा लोग आशय वो खिला रहे हैं कृष्ण को कृष्ण खा रहे हैं, और जब कृष्ण खा करके देखा ये बहुत मीठा है मक्खन
या कोई चीज तो आपने मुख से निकाल दिया और सखाओं को देने लगे, सखा को खा करके बड़े तिक्त हो रहे हैं, तो उस समय हो जाएंगे। अब उसी तरह से मधुर रस
दोनों आश्रय विषय
होते किंतु फिर भी विषय कहा जाएगा कृष्ण को ही और आश्रय कहा जाएगा, हम लोग आश्रय रूप से कृष्ण को पाने के लिए साधन भजन कर रहे हैं,
आश्रय
नहीं तो फिर वो कैसे हम उनकी सेवा करने के लिए कर, इसलिए हम लोग अभी आश्रय के अनुगत्य में हम विषय के लिए कर, इसलिए हम आश्रय का अनुगत होकर के करेंगे, विषय के अनुगत होने से नहीं होगा, कृष्ण के अनुगत होकर के हम भजन करेंगे ऐसा नहीं, कृष्ण का रूप चिंतन करते हुए करेंगे ना तो कृष्ण का सादृश्य होकर के हम चतुर्बाहु हो जाएंगे या कृष्ण जैसा अभिहार होकर के पहुंच जाएंगे, इसलिए उत्तर नहीं, हमें किसको करना है
आशा जाते
गोपियों जैसी सेवा प्राप्त करने के लिए गोपियों का चिंतन करते हुए यदि भजन करेंगे तो गोपियों का सादृश्य प्राप्त होकर के कृष्ण की सेवा है, इसलिए गोपी भाव से भजन करना ही या सखा के भाव में भजन करना या वात्सल्य के अंतर्गत होकर के अंतर्गत में भजन करना चाहिए। हम ये बतला रहे हैं जी, देखो कि कैसे बहुत गंभीर विषय अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमतार का पाली कवित श्यामा ललिता राधा प्रिया विधु जय, ये भक्त रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने पहले श्लोक में कृष्णचंद्र जी की मंगलाचरण किया, ये मंगलाचरण का पहले बताया विधुर जयती, विधुर जयती मैंने
चंद्र जय,
विधु की जय हो, विधु माने होता है विधिनों की खंडयती सर्व दुखम सर्व तापम सर्व अविद्या, ऐसे जो जितने भी चीजें हैं जो हमारे लिए बाधक हैं वो सब चीजों को खंडन मैंने दूर करना, वो है बी माने धुनोती, विधु माने धुनोती विशेष रूपे न धुनोती माने दूरम करोती सर्व पाप सर्व अविद्या सब सर्व अमंगलम सर्व अनर्थ, ये सब को दूर करके हमको कृष्ण की सेवा के उपयोगी बनाने वाले हैं, वो है यथार्थ। और एक अर्थ है विदधाति सर्व सुखम, विदधाति माने करोति लाति सर्व सुखम, यहां विदधाति विदधाति माने करोति करोति सर्व सुखम सर्व सुखम, जैसे चैतन्य इसमें शिक्षास्त्र के पहले श्लोक
चेतो
दर्पण मार्ग चेत दर्पण मार्जनम और महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, ये पहला हुआ सब प्रकार के जितने भी दावाग्नि है संसार में
निर्वापन
उसको दूर करना, भगवान का नाम ऐसा है जितने तरह के ताप हैं और तापों में भी दवाग्नि और बड़वाग्नि, बड़वाग्नि किसको कहते हैं, एक होता है वृक्षों के धरती से वन में अपने आग लग जाती है, बड़े बड़े वन में हम जाते हैं देखते हैं कि आग के मारे सब वृक्ष जल गए हैं, उसमें पशु पक्षी भी जल गए हैं, कैसे होता कौन आग लगाया, तो ये आदमी पेड़ों की डालों में डालों के भक्षण से आग पैदा होकर के और उसमें वन में आग लग जाती है, इसको कहते हैं दवाग्नि, बड़ी भयंकर होती है, किंतु भगवान की कृपा से यदि वर्षा हो जाए कुछ जोरों से तो क्या होगी
निर्वार
निर्वापन
जैसा सीन में जैसे,
किंतु यदि जल में आग लग